तकफीरी आतंकवाद।
श्रोतो, साप्ताहिक कार्यक्रम तकफीरी आतंकवाद में आपका स्वागत है। मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोतो, आज के कार्यक्रम में हम दाइश के गठन में पश्चिमी सरकारों की भूमिका का उल्लेख करेंगे। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने तकफीरी गुटों के वैचारिक सिद्धांतों का उल्लेख किया था और यह सिद्ध किया था कि इनमें से सबसे प्रमुख गुट दाइश का वहाबियत विचारधारा से क्या संबंध है। वहाबियत के जन्म लेने और इसमें ब्रिटेन की भूमिका से पता चलता है कि इस मत को शुरू से ही मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने और फूट डालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहाबियों ने एक ईश्वरवाद के ध्वजा वाहक और मानवता को शांति, न्याय और विनम्रता का पाठ पढ़ाने वाले धर्म इस्लाम की छवि खराब करके दुनिया के सामने पेश की है। वहाबियत के इन्हीं विचारों के कारण ब्रिटेन ने उसे गोद ले लिया और अन्य मतों के अनुयायी मुसलमानों के जनसंहार के लिए भूमि प्रशस्त की। इसी उद्देश्य से हिजाज का नाम बदलकर आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब रख दिया गया। अन्य मुसलमानों के खिलाफ वहाबी मुफ्तियों के फतवों ने निर्दोष मुसलमानों के जनसंहार के लिए तकफीरी युवाओं को प्रेरित किया। कुरान और अंतिम ईश्वरीय दूत की शिक्षाओं के विपरीत वहाबियों ने अपने अलावा समस्त मुसलमानों को काफिर करार दिया और इसे अपना मूल धार्मिक विश्वास मान लिया। वहाबियत के गर्भ से ही अलकायदा और दाइश जैसे खूंखार आतंकवादी गुटों ने जन्म लिया। दाइश और अन्य तकफीरी आतंकवादी गुटों को वास्तविक इस्लाम से संबंधित नहीं माना जा सकता। विश्वसनीय एवं प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर वहाबियत जैसे मतों ने पश्चिमी हितों के अनुसार मुसलमानों के बीच फूट डालने का प्रयास किया है। इसी नीति का एक उद्देश्य मध्य पूर्व में गड़बड़ फैलाना और भौगोलिक सीमाओं को बदलना है। इसके अलावा एक प्रमुख उद्देश्य इस्लामी प्रतिरोध को कमजोर करके जानी शासन के हितों की रक्षा करना है। मुसलमानों के बीच आपसी लड़ाई और रक्तपात से सबसे अधिक लाभ इसराइल को पहुंचता है, इसलिए इस प्रकार इस्लामी जगत की शक्ति आपस में टकराव की वजह से नष्ट हो जाती है। आतंकवादी गुट इसराइल विरोधी कोई कदम नहीं उठाते हैं और ज़ायोनिस्ट शासन तकफीरी आतंकवादियों के विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इसराइल का तकफीरी आतंकवादी गुटों से संबंध है और वो उनका समर्थन करता है। नाम चॉम्स्की, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन जैसे पश्चिमी विद्वान और नेताओं ने आतंकवादी गुट दाइश के गठन में पश्चिम की भूमिका को स्वीकार किया है। लीक होने वाले दस्तावेजों से पता चलता है कि पश्चिमी देशों पर दाइश के गठन का ठोस आरोप है, यहाँ तक कि अमेरिका के दो अधिकारियों की स्वीकारोक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अपने एक कठिन वकल्प में स्वीकार किया है कि अमेरिका ने परोक्ष रूप से दाइश के गठन में भूमिका निभाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि तुर्की, कतर, संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व में वाशिंगटन के घटक देश दाइश के गठन और उसे शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो बाइडन का कहना था कि तुर्की, संयुक्त अरब इमारात, कतर जैसे हमारे इलाकाई घटक देशों ने दाइश को अस्तित्व प्रदान किया है। इसी प्रकार उन्होंने स्वीकार किया कि सीरिया में अमेरिका की मूल समस्या भी यही देश है, इसलिए कि सीरिया में इन्हीं देशों ने चरमपंथी गुटों को सशस्त्र करने के बारे में वाशिंगटन की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने खुद मुझसे कहा था कि तुर्की ने सीरिया में चरमपंथी गुटों को हद से ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति कर दी है और अन्य सुविधाएँ भी प्रदान कर दी हैं। वरिष्ठ दार्शनिक एवं विश्लेषक नाम चॉम्स्की का कहना है कि सलफी वहाबी चरमपंथी सिद्धांतों ने सऊदी अरब के गर्भ से जन्म लिया है। चॉम्स्की ने उल्लेख किया कि सऊदी अरब ने इस विचार को न केवल पैसे के बल पर बल्कि मुफ्तियों और अन्य कई उपकरणों द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया है। चॉम्स्की के अनुसार सीरिया में दाइश और अन्य चरमपंथी गुट सऊदी अरब के विचारों का ही परिणाम है। उनका कहना है कि अलकायदा की एक शाखा नुसरा फ्रंट सीरिया में है और दोनों के बीच विचारों में कोई अंतर नहीं है। इस गुट की सऊदी अरब, फारस खाड़ी के अरब देशों और तुर्की ने स्पष्ट रूप से और अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। नाम चॉम्स्की के अनुसार सीरिया और इराक संकट का दूसरा कारण इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन की चढ़ाई थी। ये दोनों देश किसी हथौड़े की भांति इराक के सिर पर गिर पड़े, जिसके भयानक परिणाम हुए और लाखों लोग मारे गए। इस देश का बड़ा भाग नष्ट हो गया और इससे बढ़कर देश में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए, जो अब तक अभूतपूर्व थे, और इस लड़ाई की स्थिति और बुरी होती चली गई। कनाडा में ओटावा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल चासू दोफोस्की, जो ग्लोबल रिसर्च संस्था के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी सहयोग करते हैं, कहा कि सीरिया से लेकर इराक और अफगानिस्तान तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों में जो हम सलफी तकफीरी गुटों की गतिविधियां देखते हैं, वास्तव में ये रणनीतिक सेवा है जो अलकायदा के छत्र छाया में ये गुट अमेरिका के लिए कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम में उल्लेख किया गया है कि दाइश वही सऊदी अरब है, मूर्खतापूर्ण रेडिकल वहाबियत है। वहाबियत इस्लाम का भटका हुआ एक रूप है जो दाइश को वैचारिक भोजन उपलब्ध कराता है। इस मत का जन्म रक्तपात और कठोर नियमों के साथ हुआ। आश्चर्य की बात है कि पश्चिम दाइश को नकारता है, लेकिन मध्य पूर्व में सऊदी अरब का घटक है। दाइश की एक माँ है और वो इराक पर हमला, लेकिन उसका बाप सऊदी अरब और वहाँ भी विचारधारा है। दाइश, नुसरा फ्रंट और अन्य गुटों के आतंकवादियों को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित पश्चिमी देशों की जासूसी एजेंसियां और दूसरी ओर सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और कतर, तुर्की, जॉर्डन और इसराइल के सहयोग से प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें सशस्त्र कर रहे हैं। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि हालिया घटनाक्रमों में आतंकवाद समर्थक देशों की भूमिका एक समान और एक स्तर की नहीं रही। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मूल भूमिका में हैं और रियाज एक ओर वहाबियत और तकफीरी विचारधाराओं का प्रचार करके आतंकवादी गुटों का पोषण कर रहा है और दूसरी ओर राजनीतिक समर्थन करके इस प्रक्रिया में असली भूमिका निभा रहा है। यहाँ तक कि कुछ अवसरों पर अन्य देश वहाबियों के साथ साजिश करने से बच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव डालकर उन्हें इस खेल में खींच लिया जाता है। आले सऊद ने इस्लाम के नाम पर वहाबियत के विचारों का प्रचार किया है और वे इस्लाम के नाम पर ऐसे अपराध कर रहे हैं जिससे इस्लाम के दुश्मनों को लाभ पहुंच रहा है।